ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका आज इतवार के दिन गोवर्धन इको विलेज में स्वागत है और आप बहुत ही पवित्र समय पर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आज दीपावली का उत्सव शुरू हो रहा है। सो आज नरक चतुर्दशी है ना, कल यस्टरडे और टुमारो। हाँ, कोई बात नहीं। सो दीपावली का बहुत शुभ पर्व है और दीपावली के शुभ पर्व की जो महिमा है वो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष जो है वो ऐसे अनंत उत्सवों से भरा हुआ है। उत्सव प्रिय देश है हमारा, हर समय कुछ ना कुछ उत्सव चलते रहता है। हाँ, ये भारत की बहुत बड़ी महानता है। और हम लोग अभी आजकल के समय में जब विदेश जाते हैं ना, या कुछ लोग विदेश में काम करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, तो वो उनको इंडियन अपने आप को कहलाने में थोड़ी शर्म आती है कि आई एम फ्रॉम इंडिया, और वो लोग भी इंडियन लोगों को बड़ा नीचा देखते हैं। जैसे गल्फ कंट्रीज में वल्लाह हिंदी हदा हिंदी वल्लाह हिंदी, मतलब गया गुजरा। और हमें भी अपने भारतीय होने का इतना बड़ा अभिमान नहीं होता है, तो हम भी जब जाते हैं वहाँ पर काम करने के लिए तो सर झुका के काम करते हैं कि हम किसी पूर्व देश पूर्व दिशा में एक घटिया देश है उसके नागरिक हैं, और उनके डॉलर और यूरो और पाउंड और शिलिंग और इस प्रकार से जो करेंसी है उसके लालच में हम लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन हम लोगों को सबको पता होना चाहिए कि अनंत जन्मों के पुण्य के बाद में भारतवर्ष में जन्म मिलता है, और जब बहुत ज़्यादा भौतिक क्या कहते हैं उसको, मटेरियल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस नहीं, मटेरियल हैप्पीनेस मतलब भोग लेने की जब इच्छा होती है तो उनको विदेश में जन्म मिलता है, क्योंकि वहाँ की भूमि वहाँ का वातावरण वहाँ की स्थिति इंद्रिय भोग के लिए बहुत उत्तम है, इसलिए बेस्ट ऑफ बेस्ट सुविधाएं वहाँ रहती हैं। और हमारे यहाँ पर सोचते हैं क्या है भारत में, वाई टू कम बैक, ये ट्रेन के भीड़ में कौन चढ़ेगा, ये इतने ख़राब रोड है, इतनी सब गंदगी है, एजुकेशन भी बढ़िया नहीं है। तो यहाँ तक कि आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि घर में भी, आप ज़रा सोचिए उसके बारे में, वो तो इम्पोर्टेंट है, घर में भी जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि बेटा तुम्हें फॉरेन में पढ़ना है, उसके लिए तैयारी करो, अच्छी तरह से क्वालिफाई हो जाओ, ताकि ट्वेल्थ के बाद में ये एग्ज़ाम दे के आपको अमेरिका जाना है, आपको इंग्लैंड जाना है, आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये क्रैक करना है, वो क्रैक करना है। तो ऐसे मन में भर दिया जाता है कि आपको विदेश में पढ़ना है, वहाँ जाके रहना है, वहाँ नौकरी करनी है, वहाँ पैसे कमाना है, और फाइनली वहीं का ग्रीन कार्ड लेना है और उसी देश का नागरिक बनना है। तो हमारी बेटी जो है उसके ससुराल की जो 5 पीढ़ियाँ हैं, 5 पीढ़ी से भी इंग्लैंड में ही रहते हैं, वो सब इंग्लैंड के नागरिक हैं। सो कहने का मतलब क्या है कि चाहे हम लोग गरीब से गरीब देश के नागरिक हो, लेकिन थोड़ा तो स्वाभिमान, मतलब यू कैन सिट विथ हिम, हरे कृष्णा यू कैन सिट विथ हिम बिहाइंड। गरीब से गरीब देश के भी नागरिक होंगे ना, तो उस व्यक्ति को अपने देश पर गर्व होना चाहिए। गरीब से गरीब गांव के आप जन्मे हुए हो तो भी आपको अपनी जन्मभूमि पर गर्व होना चाहिए, जिसको खुद के चीज पर गर्व नहीं तो बाकी के चीज पर गर्व कैसे करेगा। ये सारे लोग जो हैं विदेश के, जितने देशों के धनी लोगों के देश हैं, वो सब लोग जब परेशान होते हैं तो मन शांति के लिए भारत में आते हैं। क्यों? उनका सब कुछ है, पैसा है, इज्जत है, अधिकार है, टेक्नोलॉजी है, हर प्रकार की सुविधा है, हर प्रकार के आनंद के साधन है। हाँ, दो दो मिनट में फ्लाइट उड़ते हैं, हवा में ऐसे लाइन में ही लिखते हैं, किसी का क्रैश नहीं होता, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, फिर मन शांति क्यों नहीं मिलती है? अगर इतने सारे सुविधा, टेक्नोलॉजी, धन, इंद्रिय भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये सब होने से अगर आनंद मिलता तो लोग अपने पास हिमालय में क्यों आते? आनंद ढूंढते ढूंढते, खुशी ढूंढते ढूंढते, मन शांति को ढूंढते क्यों आते? इतना सब होने पर भी वहाँ पर आत्महत्याएं ज़्यादा क्यों हो रही है? वहाँ पर विफलता, लोनलीनेस, डिवोर्स, क्राइम, शूटिंग, स्कूल में, स्कूल के बच्चे, 8वीं में बच्चा है, गन लेके आता है, सब 17 स्टूडेंट्स और 10 टीचर को ख़त्म कर देता है। ये कुछ मन शांति का प्रमाण नहीं है कि मन बहुत शांत है, इसलिए वो गोली मार रहा है सबको। मन में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, क्रोध है, एंगर है, इसलिए वो कहीं ना कहीं निकालने का प्रयास करते हैं उसका। आवाज़ बंद हो गया? हरे कृष्णा। तो इसलिए हम सबको पता होना चाहिए कि सही धन का अर्थ क्या होता है। धन त्रयोदशी हमने कल मनाई ना, धन त्रयोदशी का वास्तविक अर्थ क्या है और किस धन के लिए हम भगवान को पूज रहे हैं? वो धन है आध्यात्मिक धन, स्पिरिचुअल वेल्थ, जो हमको पूरी शांति, आनंद, सुकून, कोऑपरेशन, हार्मनी, इसका अनुभव देता है। और उसके लिए जेब में पैसे नहीं होंगे तो भी चलेगा, मन में आनंद होना चाहिए। जेब में बहुत सारे पैसे हैं, घर पे भी है, FD में भी है, प्रॉपर्टी में भी है, सब जगह पैसे हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है, मन में एंग्जाइटी है, भय है, क्रोध है, विद्रोह है समाज के प्रति, जीवन के प्रति, तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जब भी एक बार विश्व में सबसे ज़्यादा सुखी लोग कौन है, इसका सर्वे किया गया, सबसे ज़्यादा सुखी कौन है, तो बांग्लादेश पाया गया उसमें, सबसे ज़्यादा लोग सुखी है इधर, और एकदम गरीब देश है, भारत से भी बहुत ही गरीब देश है वो, लेकिन देखा गया कि वो लोग एकदम सादगी में रहते हैं, बहुत सिंपल चीज़ों में खाते पीते रहते हैं और कोई ऐसा झगड़ा गुणा कुछ नहीं है, और हर एक व्यक्ति, एवरेज व्यक्ति संतुष्ट है, नो एस्पिरेशन कि ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भारतवर्ष इसलिए सर्वश्रेष्ठ देश है, चाहे वो आज रास्ते कितने भी खराब हो उसके, चाहे कितनी जगह कीचड़ हो, चाहे मैनेजमेंट गवर्नमेंट का ठीक नहीं हो, लेकिन आज भी भारतवर्ष जो है सबसे श्रेष्ठ देश है, क्योंकि इस देश में आप भगवान को मिल सकते हैं, भगवान की प्राप्ति यहाँ से हो सकती है। इसी देश को भगवान ने चुना है अपने सारे अवतार लेने के लिए। भगवान एक अवतार इंग्लैंड में, एक अवतार स्विट्जरलैंड में, एक अवतार अमेरिका में लेते हैं क्या? कभी कभी भी नहीं लिया। सारे जितने भी ढेर सारे संभवामी युगे युगे, सारे अवतार जो है भारतवर्ष में लिए। ये भारतवर्ष की मिट्टी जो है वो अनंत भगवान के अवतारों के चरणों के स्पर्श से पुनीत हो गई है। उस देश के हम वासी है जिस देश में गंगा बहती है, इसमें गर्व होना चाहिए। गंगा जो परम पवित्र करने वाली, भगवान के विष्णु पद गामिनी है, वो विष्णु के अंगूठे से निकलती है, पूरे क्रिएशन को, ब्रह्मांड को नहीं, ब्रह्मांडों को, भौतिक जगत को, आध्यात्मिक जगत को, सबको परम पवित्र करने वाली है वो, भगवान के चरणामृत है स्वयं वो। वो केवल भारत में घूमती है, कहीं विदेश में घूमती नहीं, वो कोई उसका ब्रांच विदेश में जाता नहीं है। यमुना वो भी भारत में ही घूमती है, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, इंद्रायणी, आप नाम लेते जाइए। अभी मुंबई से केरला जाएंगे तो 29-30 रिवर आएंगे, हर एक का नाम अलग अलग है, समुद्र की तरह विशाल पात्र है उसका, और हर एक नदी पवित्र देवी का स्वरूप है। ये सब भारत में है। इंग्लैंड में एक नदी है थेम्स नाम की, अमेरिका में एक दो नदी है मिसिसिपी, बस दैट्स ऑल। पवित्रता का कुछ नाम नहीं है। हमारे यहाँ पर नदी किनारे हर क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र माना गया है, तीर्थ क्षेत्र माना गया है। वहाँ पर आप कुछ भी अच्छा कार्य करेंगे तो आपको अनंत पुण्य प्राप्त होगा। वो रज से लोग नहाते हैं, साबुन की तरह अपने शरीर को मलते हैं। गंगा जी की रज को, जमुना जी की रज को, कावेरी की रज को, साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, सब जगह पर अनंत जन्मांतर के जो पाप और संचित हमने इकट्ठा किए वो इन नदियों के रज के स्पर्श होने से, जल का स्पर्श होने से, जल में स्नान करने से, जल को पीने से नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई फॉर्मूला किस देश में नहीं है, और वो भी जानते हैं। अगर एंजॉय करना है तो वेस्ट में जाओ, एंजॉय करके फ्रस्ट्रेट हो गए तो ईस्ट में आ जाओ। मतलब आना फिर भी ईस्ट में ही है, क्योंकि भगवान ने लिखा है माम उपेत्य दुखोन्तय दुखालयम अशाश्वतम। इसमें कितना भी भोग लेंगे तो भोग की आग जो है वो कभी समाप्त नहीं होती। बहुत बड़ा वाक्य है ये, हमने शास्त्र में पढ़ा है कि सारा जीवन बिताने के बाद एक ही पता चल रहा है कि इंद्रिय भोग की इच्छा का कोई अंत नहीं है, चाहे वो इंडिया में हो या परदेश में हो। इसलिए हम सब लोगों को ना सबसे पहले अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, फिर अपने बच्चों को वो भारतीय होने का गर्व देना चाहिए, और इसी देश में रहने की स्फूर्ति देनी चाहिए उनको एंड में। बिल्कुल हो रहा है। सो भारत में रहने के लिए बच्चों को प्रेरणा देना चाहिए। बाहर जाके पढ़ के आओ, प्रॉब्लम नहीं, कम बैक हियर एंड सर्व योर सॉइल, अपने देश की भूमि की सेवा करो। आपके अंदर टैलेंट है तो बाहर के लोगों को क्यों देते हो, अपने देश की सेवा में लगाओ। आज भी भारत का बेस्ट टैलेंट जो है वो सब विदेशों की सेवा में है, अमेरिका इंग्लैंड के सब कंट्री हमारे देश लोग ही चलाते हैं, लेकिन उनके पैसे के लालच से अपनी बुद्धि का उपयोग उनकी सेवा में दे रहे हैं। विफल है सेविनु कृपण दुर्जन चपल सुखल बलागिरे। एक चपल सुख के कारण अपना देश छोड़कर अपनी बुद्धि को हमने वहां बेच दिया है, केवल कुछ धन के लिए और इंद्रिय भोग के लिए। लेकिन वही हम लोग जब तक भारत वर्ष पर गर्व नहीं करते हैं वही तड़पते रहेंगे, और वहां पर शरीर त्यागने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, यहां शरीर त्यागने से भगवान की प्राप्ति होती है। अपनी भूमि का महात्म्य हमको समझना चाहिए। और ऐसे ही हमारे देश में, कौन से देश में दीपावली होती है, हमारे लोग जो रहते हैं वहाँ पर वहीं लोग अपना दीपावली मनाते हैं, अमेरिका इंग्लैंड में, लेकिन उनमें कोई दीपावली नहीं है कुछ। और हमारे यहाँ पर जितने भी उत्सव हैं वो हर एक उत्सव के पीछे एक बड़ी दास्तान है, एक बड़ी कहानी है, बड़ा उपदेश है, टेक होम मैसेज है, एनरिचिंग टेक होम मैसेज। कब हमको पता चलेगा वो, कब हम खुद समझेंगे, कब हमारे बच्चों को समझाएंगे। एनीवेज, मैं जब पहली बार इंग्लैंड अमेरिका गया था ना पढ़ने के लिए गया था, तभी भगवान के दया से ऑलरेडी हरे कृष्ण में आ चुका था मैं। तो मैंने जब भी न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे पहला कदम रखा तो मुझे ना ऐसा लगा कि आत्मा पर एक कोई बड़ा नेगेटिव बोझ आ रहा है। ऐसे आई फेल्ट फ्रॉम विद इन सम वेरी हैवी नेगेटिविटी इज अफेक्टिंग माई हार्ट। और बाद में मुझे पता चला कि वहाँ पर जो इंद्रिय भोग का कार्य होता है, बहुत सारे नियम तोड़ते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार, जुआ, नशा, मांसाहार और क्या क्या करते हैं, कोई नियम कोई पालन नहीं करते, वो शिष्टाचार मर्यादा कुछ है ही नहीं, उसका कलेक्टिव इफेक्ट उस वातावरण में है। जैसे मैं वृंदावन जाता हूँ ना तो मुझे एक दिव्य आध्यात्मिक ऑरा में प्रवेश करने का अनुभव होता है, वो भी हृदय के अंदर ऐसी अनुभूति होती है कि मैं कोई दिव्य स्थान पर आया हूँ जहाँ पर भगवान का अस्तित्व की अनुभूति हो रही है। यू फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इन द एटमोस्फियर। और ये हर एक व्यक्ति को होता है, हम लोग उसको अनदेखे अनसुनी कर लेते हैं, दुर्लक्ष कर लेते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को वो वातावरण में ही पवित्रता है कि अपवित्रता है इसकी अनुभूति होती है। शराब के अड्डे जाने पर, मांसाहार की जगह जाने पर, कत्तल खाने में जाने के बाद एक अलग अनुभूति होती है, और बगीचे में जाने के बाद, मंदिर में जाने के बाद एक अलग अनुभूति होती है। वो सब वर्णन नहीं कर सकते, उसको यहाँ अनुभूति होती है। तो मैं जितना दिन पढ़ने के लिए वहाँ रहा, मेरा 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र करने का नियम है, मैंने वहाँ पर 30-30 माला रोज जप किया, वो नेगेटिविटी को क्या करने के लिए, नलीफाई करने के लिए, कि मुझ पर उसका असर नहीं होना चाहिए। जैसे क्या होता है, जब बहुत गर्मी का मौसम आता है और बहुत पसीने आते हैं, तो आमतौर पर हम लोग एक बार स्नान करते हैं, लेकिन वो गर्मी के मौसम में 3 बार स्नान करते हैं, कभी 4 बार भी स्नान करते हैं, क्योंकि ज़्यादा गंदगी हो रही है तो ज़्यादा स्नान करते हैं। तो उस तरह से सूक्ष्म रूप से जब आत्मा पर नकारात्मक वातावरण का परिणाम होता है, तो हम ज़्यादा जप करते हैं, ताकि वो परिणाम हमारे आत्मा की गहराई में ना पहुँचे और हम लोग वैसे अच्छी तरह से लौट के आए अपने आप को संभाल कर। आज अगर विश्व को कोई आध्यात्मिकता दे सकता है तो एक ही देश है, वो भारतीय देश। इस पर इतने हमले किए गए इसका धर्म तोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी कोई इनकी धार्मिकता तोड़ने का सफलता नहीं प्राप्त कर सका, क्योंकि यहाँ की जो धार्मिकता है वो बहुत गहरी है, वो श्री कृष्ण के प्रेम तक पहुँची हुई है। केवल फिलोसॉफिकल ज्ञान नहीं है यहाँ का, केवल भगवद्गीता है, इसलिए यहाँ पर लोग ज्ञानी नहीं है। अभी आज के ज़माने में हमारी भगवद्गीता विदेशी पंडित ज़्यादा पढ़ते हैं और भारतीय लोग कम पढ़ते हैं। बताइए आप में से कितने लोगों ने भगवद्गीता पढ़ी है? उसको पढ़िए, कृपा करके पढ़िए। हाँ, कोई संकोच मत कीजिए कि आपने नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, समय अभी तक बहुत बाकी है जीवन में, इट इज़ नेवर टू लेट। हाँ, दिस लाइफ इज मेंट टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ गॉड, जो कि केवल इस देश में उपलब्ध है और विश्व में उसको मान्यता भी प्राप्त है। इसलिए बालक समय से लेकर बुजुर्ग समय तक भगवद्गीता का अध्ययन होना चाहिए, और वो भी कहाँ कही गई थी? हमारे देश में, आपके देश में कही गई थी, कुरुक्षेत्र नाम के पवित्र स्थान पर। युद्ध होने के पहले भगवान ने अर्जुन को इतना दिव्य उपदेश किया था, जिससे पूरा अर्जुन का जीवन चेंज हो गया, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। दुखी था बेचारा, वो एकदम कंपोज हो गया, संतुलित हो गया, खड़े होकर पूरा युद्ध किया, इत्मीनान से विजय प्राप्त की भगवान के आदेश के अनुसार। करिष्ये वचनम तव, नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा, पूरा ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है, सही मार्ग क्या है पता चल गया है, अब मैं आप जो कहेंगे वैसे करूँगा। उसी प्रकार से कार्य चलाया तो महाभारत का युद्ध जीता और विश्व का सम्राट बने वो सब लोग। वो अद्भुत ज्ञान जो है वो राजा बनने का इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जुन राजा बना विश्व का, वो पर्पज नहीं है भगवद्गीता का। विफलता में डूबा हुआ व्यक्ति दोबारा खड़ा हो गया, जिस गांडीव धनुष को चलाने में वो इतना निपुण था, विश्व का सर्वोत्तम धनुर्धर योद्धा था, वो कह रहा है कि मेरे हाथ से धनुष फिसल रहा है, उठा ही नहीं पा रहा हूँ मैं, तो उसका सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने का मतलब क्या है? वो आज धनुष नहीं उठा पा रहा, इतना मन उसका उद्विग्न है कि वो आज वो उसका सेलिब्रेटेड धनुष जो है उसको उठा नहीं पा रहा है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? मन अगर सबका संतुलित नहीं है तो फायदा क्या है? मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन सही होगा तो सब कुछ दुनिया में आनंद ही आनंद है, मन दुखी है तो सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं है। तो उस बिखरे हुए मन को अपने भगवान ने अपने गीता के उपदेश से संवारा है, और एक श्रेष्ठ व्यक्ति का श्रेष्ठ आउटपुट परफॉर्मेंस को है वो इंस्पायर किया भगवान ने। लॉर्ड कृष्णा इंस्पायर्ड द बेस्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ अर्जुन, और द बेस्ट मैन का बेस्ट परफॉर्मेंस भगवान ने यहाँ पर प्रकट किया है केवल अपनी वाणी से। तो आइए हम सब लोग अपना अपना देश का, अपने जन्म का, अपने संस्कृति का गौरव समझे, खुद समझे और अपने बच्चों को समझाएं, फिर वो अपने बच्चों को समझाएंगे। ऐसे हमारे अनंत पीढ़ियाँ जो है अपने शास्त्र पर गर्व करेगी। हमारा ये भाग्य रहा कि हमने पूरे स्कूल के एज में ही रामायण महाभारत, ये जो रामलीला के मैदान में ही सब देखा था हमने, हमने कभी रामायण महाभारत पढ़ा नहीं बचपन में, अभी पढ़ा हरे कृष्ण में आने के बाद, लेकिन बचपन में कभी पढ़ा नहीं, हमको पूरा रामायण पता है। हरे कृष्ण मंदिर में आने के पहले रामायण महाभारत पूरी पता थी हमको, क्यों? क्योंकि ऐसे खेलते खेलते हम लोग ने नाटिकाएँ देखते देखते सब रामायण महाभारत सिखाए। ऐसे हमारी देश की महानता है कि हमारा बालक बढ़ता है जब भी उम्र में, तो अपने आप सब सीखता है गणपति कौन है, नवरात्रि क्या है, चैत्र की नवरात्रि, अश्विन की नवरात्रि, दीपावली, सब पता है उसको। फिर भी अभी पता नहीं है लोगों को। अभी किसी बच्चे को पूछेंगे आज का महत्व क्या है, दे विल नॉट नो, क्योंकि माता पिता ने कभी बताया नहीं उनको कि नरक चतुर्दशी का मतलब क्या है, दीपावली का मतलब क्या है, बलि प्रतिपदा क्या होती है, भैया दूज क्या होती है। उनको इतना ही बताया गया है, इसमें छुट्टियां होती है, बाहर जाके एंजॉय करना होता है, लॉन्ग वेकेशन होता है। सब लोग गिन रहे, शनिवार से चालू हो गया है, एक मंगलवार की छुट्टी डाल दिया तो पूरा 7 दिन की छुट्टी मिलती है, बस इतना सब बच्चों को मालूम है। कि दिवाली मतलब एंजॉय, ईट गुड फूड, वेयर न्यू ड्रेस, फटाके फोड़ना है, मजा करना है। बट क्यों इसी टाइम पे मजा क्यों करना है, बाकी टाइम पे क्यों नहीं करना है? गणपति में सब लोग खुश क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 5 डेज का हॉलीडे दिया है कंटिन्यूअस, तो एवरीबॉडी इज प्लानिंग गणपति में बाहर जाना है। ये गणपति कौन है पता नहीं, लेकिन गणपति के नाम से बाहर जरूर जा सकते तो ऐसे हमारी दीपावली का सर्वोत्तम उत्सव है भारतवर्ष में, जो अभी हम मनाने जा रहे हैं। इतनी आध्यात्मिकता इसमें भरी हुई है। हाँ, तो हम लोग कई दिन से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वृंदावन के बारे में। हाँ, ये वृंदावन ही दीपावली का मूल है, क्योंकि वृंदावन में जब भगवान कृष्ण बाल रूप में थे तभी दीपावली के दिन यशोदा मैया ने उनको उकल से बांधा था, इसलिए उनका नाम पड़ा दामोदर। दाम यानी दोरी, जिनका उदर यानी पेट दोरी से बांध दिया मैया ने, उसका नाम पड़ा दामोदर। और वो जो उखल बंधन की लीला है वही दीपावली का सेंट्रल कंसेप्ट है। पूरे महीने का नाम भी दामोदर है, वैष्णव महीने में, वैष्णव कैलेंडर में जो महीना आता है इसको दामोदर मास कहते हैं। राम भगवान दीपावली में अयोध्या लौट के आए, रावण का वध करके विष्पक विमान में बैठ के उन्होंने इस नगरी में प्रवेश किया, तो सभी लोगों ने दीपक लगाकर, सब अपने अपने दीपक प्रज्वलित करके हुए, सुगंधित द्रव्यों का सड़ा करते हुए उन्होंने प्रभु रामचंद्र का स्वागत किया, उनका आगमन मनाया उन्होंने उत्सव के रूप में। ऐसा हमारा सुंदर धरोहर है हमारी, दिस इज द हिस्ट्री दैट वी हैव गॉट। ये माइथोलॉजी नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। माइथोलॉजी मतलब दंत कथा, झूठ मूठ की कथा, मनोरंजन के लिए बनाई गई, बुजुर्ग उसको बताते हैं, बच्चों को उपदेश करने के लिए बनाई गई झूठ मूठ की कहानियां हैं, इसलिए उसका माइथोलॉजी दिया है नाम। और हम लोगों को पता नहीं है कि हिंदू माइथोलॉजी ऐसे कहते हैं, कभी आपने सुना है क्या? क्रिश्चियन माइथोलॉजी, इस्लामिक माइथोलॉजी, बुद्धिस्ट माइथोलॉजी, नहीं सुना है? ये जानबूझकर किया हुआ षड्यंत्र है हमारे ऊपर, ब्रिटिशों ने किया हुआ षड्यंत्र है कि आपका जो कल्चर है वो माइथोलॉजी है। पर कभी भी उन्होंने क्रिश्चियनिटी को क्रिश्चियन माइथोलॉजी नहीं बताया, क्रिश्चियन दंत कथा ऐसा नहीं बताया कभी। हमको विचार करना चाहिए। टीवी पर भी बोलते हैं यू आर वेल वर्स्ड इन हिंदू माइथोलॉजी। हाँ, हिंदू पंडित व्यक्ति है वो बोल रहा है, यस आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिंदू माइथोलॉजी। खुद ही बोल रहा है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो माइथोलॉजी है, तो पता ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं। ये हमको बौद्धिक दारिद्र जो है ना वो छोड़ देना चाहिए, इंटेलेक्चुअल स्लेवरी, वी हैव टू गिव अप एंड अपोज वेन एवर पीपल से माइथोलॉजी। ये माइथोलॉजी नहीं है, ये इतिहास है हमारा, ये सत्य इतिहास है। रामायण सत्य इतिहास है, महाभारत सत्य इतिहास है, और रामायण का सत्य होने का प्रमाण है, सैटेलाइट से फोटोग्राफ लिया हुआ है, सेतुबंध दिखाई पड़ता है रामेश्वर से श्रीलंका तक, 100 कोस 800 माइल्स, ऐसे कई सारे प्रूफ हैं, कई सारे प्रूफ हैं जो हमारे इतिहास की घटना सत्य है। फिर भी हमारे मन पर ठोसा जा रहा है कि ये माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी, ये जो भगवान दिखाई पड़ रहे हैं ये सब माइथोलॉजी है, ये सब गोवर्धन को उठाया और 10 मुख का रावण था, ये सब झूठ है, बच्चों को कहानी में रिझाओ, उसका पर्पज़ ख़त्म हो गया। एनीवेज, तो इस भारत के गौरवशाली इतिहास को हम सबको पढ़ना चाहिए, ये जीवन उसी के लिए, उसको पढ़े बिना अगर शरीर समाप्त हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है, तो हम बहुत ही दुर्दैवी हैं, बहुत ही दुर्दैवी हैं। इस दुर्दैवी को हम मिटा सकते हैं, क्योंकि तो मनुष्य जीवन आपके हाथ में है, वो भी भारत में जन्म लिया हुआ मनुष्य जन्म आप लोगों के पास है, उसका उपयोग करके चाहे कितनी भी उम्र हो जाए इसको धन्य करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश को समझते हुए श्री कृष्ण के चरणों में अपने जीवन को अर्पण करना चाहिए, वही सच्चा भारतीय है। और मैं आपको भारत की एक अनेक व्याख्याएं हैं, एक व्याख्या बताता हूँ, भा और रथ। हाँ, भा यानी अनेक अर्थ है भा के, एक अर्थ है राधा कृष्ण के प्रति भक्ति, एक अर्थ है भा का राधा कृष्ण के प्रति भक्ति। और रथ यानी जिस देश में राधा कृष्ण के भक्ति में लोग रत रहते हैं, दे इमर्स्ड, वो भारत देश है। कितने लोगों को पता है? हमको इतना ही पता है कि इतने पैसे बहुत कम मिलते हैं यहाँ पर।
थोड़ा सा उसको बढ़ाओ, ठंडी बढ़ा दो।
सो इसलिए बार बार नई नई माताओं को, मिडिल एजेड माताओं को विनती करता हूँ, क्योंकि आपके परिश्रम से आपके बालक के जीवन का कल्याण हो सकता है, अगर आपने इसको गंभीरता से लिया। क्योंकि हम प्रभु लोग सब लोग काम में बिजी रहते हैं, धन कमाने के लिए, परिवार को मेंटेन करने के लिए बाहर काम करते रहते हैं, माता दिन भर बालक के साथ में रहती है, और माता का जो कल्चर है वो बालक को प्राप्त होता है। भाषा भी बच्चा माता की बोलता है, इसलिए क्या बोलते हैं, मातृभाषा। कभी बोलते हैं कि हम लोग हमारी पितृभाषा क्या है, ऐसे बोलते हैं कभी, व्हाट इज योर मदर टंग, यू डोंट से व्हाट इज योर फादर टंग। क्योंकि बालक जो है वो मदर की टंग, मतलब मदर की भाषा जो है वो स्वीकार करता है। मतलब अगर महाराष्ट्र है तो बालक महाराष्ट्रीयन बोलेगा, मराठी बोलेगा। मतलब मलयाली है तो हस्बैंड मराठी होगा तो भी वो मलयाली बोलेगा, क्योंकि माता की भाषा स्वीकार, माता का ही भाषा, माता का ही कल्चर वो स्वीकार करता है। जब माता बालक को सिखाती है, 90% जो संस्कृति हमारी है, कल्चरल एजुकेशन है, वो माता की तरफ से होता है। और पिता जो है वो शासन देता है, मतलब डिसिप्लिन, कोई बच्चा बिगड़ने जाना चाहिए तो शासन पिता का है। लेकिन सारी संस्कृति आज जो मुझ पर है वो भी माता की वजह से है। बाद में फिर समाज की तरफ से स्कूल, कॉलेज, MBBS जो भी उसके बाद में है, मूलभूत जो ट्रेनिंग है, इंसान की ट्रेनिंग, इंसानियत की ट्रेनिंग, वो माता की तरफ से मिलती है। उसी तरह से भगवान के विषय में आध्यात्मिक ट्रेनिंग जो है वो भी माता की तरफ से मिलती है। एनीवेज, आज मैंने यहाँ पर सोचा है कि यमुना जी के बारे में आपको बताऊँ, क्योंकि मेरे अभी 20 लेक्चर हो चुके हैं, उसमें आज का विषय यमुना देवी है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ यमुना देवी है कौन। यमुना देवी गौलोक वृंदावन में भगवान के धाम में चलने वाली नदी है। गंगा और यमुना और सरस्वती, ये सब लोग भगवान के धाम से निकलने वाली नदी हैं। और भगवान का धाम जो, इसको कहते हैं गौलोक वृंदावन। और गौलोक वृंदावन यानी गौलोक, जहाँ पर भगवान को, भगवान गाय के प्रेम में रहते हैं, इसलिए नाम दिया है गौलोक, जहाँ पर गाय रहती है, भक्त भी रहते हैं, लेकिन भगवान ने गायों के ऊपर अपना धाम का नाम दिया है। जैसे कोई अपने बंगले में लिखता है ना, पूजा, संवेदना, आनंद, तो जो उनका भाव है वो नाम के रूप में देते हैं बंगले को। भगवान ने भी अपने धाम का नाम दिया है गौलोक, इतना गाय को मानते हो, इतनी गाय हमारे देश में वंदनीय है, पूजनीय है। और गाय की जो सेवा करता है उसको किसी पाप का स्पर्श नहीं होता है। जो गोबर या गोमूत्र या दूध या गाय की जो वस्तुएं हैं, पंचगव्य और पंच अमृत, ये गाय की तरफ से प्राप्त होता है। वो गाय के संपर्क में जो व्यक्ति है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसके जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं रहती हैं, मेंटल डिस्ट्रेस रहता नहीं है कभी भी। अभी वो भी बड़ा विषय है, गाय जो हमारे देश की एक बड़ी धरोहर है। एक भारत देश का और एक नाम है जिसमें गाय निर्भय होकर विहार करती है, उसका नाम भारत देश है। इसका मतलब गाय का कत्ल नहीं होता है, होना नहीं चाहिए, ये पुरानी व्याख्या है, अभी वो लोगों ने झूठ कर दिया उसको। है यहाँ पर भी गाय का वध होता है, कौन कह रहा है यहाँ पर नहीं होता है। उस व्याख्या को जो पुरातन काल से चलती आ रही है वो आज के लोगों ने उसको फेल कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्याख्या गलत है, हम नियम तोड़कर नियम को इम्पोर्टेंट मतलब कम इम्पोर्टेंट बना सकते हैं, लेकिन नियम नियम ही होता है, उसका वैल्यू होती है। आप लोग नहीं फॉलो करेंगे ऐसा मतलब नियम इम्पोर्टेंट नहीं, ऐसा नहीं होता है। नियम अपनी जगह पर महान है, हम फॉलो करेंगे तो हम भी महान हो जाएंगे। तो उसी गौलोक में यमुना नदी है, उसी गौलोक में गोवर्धन पर्वत है, और भूमि को वृंदावन कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें अविभाग्य अविभाज्य हैं, बहुत चीज़ें अविभाज्य हैं, तीन मूलभूत हैं, वृंदावन, गोवर्धन और यमुना। तो ये यमुना भगवान के आदेश से गौलोक छोड़कर यात्रा करते 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 पृथ्वी पर आती है। तो बताऊंगा उसका जर्नी कैसे हुआ, लेकिन इसका कारण क्या था कि जब भी पृथ्वी पर बहुत अत्याचार होता है, असत्य और पाप की वृद्धि होती है, उस समय पृथ्वी माता गौ माता बनकर ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर विष्णु के पास जाते हैं, फिर उनको निवेदन देते हैं, फिर वहाँ से भगवान का रिस्पॉन्स आता है कि डोंट वरी, मैं भी आ रहा हूँ, अवतार लूँगा और आपके ऊपर होने वाला अत्याचार को मैं नष्ट कर दूँगा। तो एक समय पर जब ऐसा हुआ था, तभी सब लोग भगवान को मिलने के लिए गौलोक गए थे, तो भगवान ने पृथ्वी को वादा किया था, डोंट वरी मैं आऊँगा। और उस समय राधा रानी खड़ी थी साथ में, भगवान सामने साथ में खड़े होकर आश्वासन दे रहे थे, डोंट वरी मैं आ रहा हूँ। सब लोगों को डिटेल इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आपको क्या क्या बनकर जन्म लेना है, कहाँ कहाँ लेना है, मैं उसके बाद में कैसे आऊँगा, किसका पुत्र बन के आऊँगा और कैसे कैसे काम करूँगा, ऐसे बता ही रहे थे। तो राधा रानी खड़े होकर सुन रही थी इनका अनाउंसमेंट, तो बेहोश होकर गिर गई। तो कृष्ण ने पूछा क्या हुआ, उसको होश में लाया गया। तो कहते कि आप जा रहे हैं ना, आपने खुद ही अनाउंस किया कि आप जा रहे हो, तो आपके जाने के बाद होने वाले, भविष्य में होने वाले जो मेरे लिए कष्ट है ना, उसके लिए मैं दुखी होकर बेहोश हो गई। तो कृष्ण कहते हैं कि किसने बोला आपको कि मैं आपको छोड़ के जाऊँगा, मैं तो आपके बिना रह सकता नहीं हूँ, आप भी मुझके मेरे बिना रह नहीं सकती हैं, तो मैं आपको साथ ही लेके जाने वाला हूँ। लेकिन वो कहते कि मैं नहीं आऊँगी, लेकिन फिर भी आप चाहते तो ज़रूर हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपके साथ आऊँ। बोले क्यों? बोले जहाँ पर वृंदावन नहीं है, जहाँ पर यमुना नहीं है और जहाँ पर गोवर्धन नहीं है, वहाँ मुझे एक कण का भी सुख प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान ने कहा कि आपके मन की बात को जानकर मैंने पहले से ही वृंदावन, यमुना, गोवर्धन को नीचे भेज दिया है पृथ्वी पर, जहाँ पर मैं आने वाला हूँ, इसलिए आप उनके बाहर नहीं रहोगी, उसी में रहोगे आप। तो एक तो राधा रानी की वजह से वृंदावन, यमुना, गोवर्धन पृथ्वी पर अवतरित हुआ, और दूसरा इनके होने के वजह से राधा रानी यहाँ आती है, तो राधा रानी को इनके बाहर रहने की कोई इच्छा नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, राधा रानी का अस्तित्व अमेरिका में, इंग्लैंड में नहीं है, भारतवर्ष में है। क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है ना, यत्र गोवर्धनो यत्र यमुना नास्ति यत्र वृंदावन नास्ति तत्र में न सुख, एक भी कर्ण का सुख नहीं मुझे। इसका मतलब या तो आप वृंदावन में रहो तो राधा रानी का अस्तित्व मिलेगा, या तो वृंदावन जैसा वातावरण कहीं निर्माण करो तो वहां पर भी वो रहेंगे, क्योंकि उनको वृंदावन चाहिए निवास करने के लिए। तो वृंदावन केवल शरीर से नहीं होता है कि भाई यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दिल्ली से 150 किलोमीटर साउथ वेस्ट में जो मथुरा मंडल है वहाँ पर वृंदावन है, वो भी है, लेकिन दूसरा वृंदावन भाव में होता है, भाव अस्तित्व होता है उसका, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो अगर हम निर्माण कर सकते हैं अमेरिका में, तो वहाँ पर भी राधा रानी आपके घर पर रहेगी, लेकिन वृंदावन का वातावरण नहीं रहेगा तो उनको एक कण का भी सुख वहाँ प्राप्त नहीं होगा और वहाँ नहीं रहेगी वो। अब जहाँ राधा रानी नहीं रहेगी वहाँ कृष्ण भी रहते नहीं हैं, क्योंकि राधा रानी के बिना वो रह सकते नहीं हैं। ये सब फॉर्मूला समझना जरूरी है, सुख यहाँ पर भारत में क्यों है, क्योंकि भारत में राधा कृष्ण, राम सीता, ये सब लोगों का निवास है, चिरंतन निवास है। जो जो उनके भक्त हैं, जो उनको पुकारते हैं, उनके लिए वो सदैव यहाँ पर विराजमान हैं, और बाकी लोगों को जिनको श्रद्धा नहीं है उनको दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनकी अनुभूति उनको प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसी यमुना देवी भगवान के आदेश से अनुसार, अभी देखिए गौलोक वृंदावन से निकली हुई है, मैं उनकी यात्रा आपको बताता हूँ। जैसे भगवान ने यमुना जी को आज्ञा दी कि आप जाइए और हमारे आने का इंतज़ार कीजिए, तो यमुना देवी ने भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की है आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और उस समय विरजा नदी और गंगा नदी उनके साथ में निकली है टुगेदर, और विरजा नदी को साथ लेकर वो एक निकुंज द्वार है। भैया वो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, वो छोड़कर वहाँ से निकली हुई है और अनेक वैकुंठों को ब्रह्म ज्योति को पार करते हुए विरजा नदी के पास आई है। और विरजा नदी जो है वो वैकुंठ लोक और हमारा लोक जहाँ पर जन्म मृत्यु है वो भौतिक दुनिया कहते हैं उसको। वैकुंठ लोक का मतलब वैकुंठ, जहाँ पर जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा नहीं होता है, वही यानी परे है उसके, वो ये कुंठ है और वही कुंठ है, उसके बीच में नदी है विरजा, वी रजा रजोगुण के परे जो ले जाती है वो विरजा नदी है। उसको पार करते ही हम रजोगुण के परे विशुद्ध सत्व में पहुंच जाते हैं जहाँ पर भगवान का धाम है। तो वहाँ से आती है और विरजा नदी जो बीच में डिवाइड कर रही है उसको छेद करके उसमें से गुजरती है वो, और इस जगह पे आती है, इस एरिया में आती है, जिसको कहते हैं महत्तत्व यानी भौतिक जगत जो अंधकार में रहता है, जिसमें अनेक ब्रह्मांड निर्माण होते हैं और वहाँ पर जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा का क्या कहते हैं उस प्रभाव रहता है। तो वहाँ पर भगवान के शरीर के निकला हुआ ब्रह्म तेज है, उसके अंदर अनंत वैकुंठ विराजमान है, एक वैकुंठ नहीं अनंत वैकुंठ है। उसको पार करते आगे जाएंगे तो महाविष्णु का राज्य आता है। महाविष्णु के राज्य में उनके शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं और सब अंधकार होता है। शरीर से ब्रह्मांड बीज रूप में निकलते हैं और वो परिपक्व हो जाते हैं, ब्रह्मांड फॉर्म होते हैं। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड में से जिस ब्रह्मांड में भगवान अवतार लेने वाले हैं, जो पृथ्वी देवी वहाँ आई थी उनके लोक में भगवान ने ब्रह्मांड के रंध्र में प्रवेश किया। वो रंध्र किसने पैदा किया था, जब वामन देव ने अपना तीसरा कदम उठाया था ना दूसरा कदम, तो ब्रह्मांड के कवरिंग को उन्होंने छेद किया था। वो छेद से गंगा विरजा यमुना देवी ने प्रवेश किया। सबसे पहले वहाँ से ब्रह्मा लोक गए। सबसे टॉप प्लैनेट कौन सा है, ब्रह्मा लोक। फिर वो तपलोक सिद्धलोक स्वरलोक भूलोक भूवरलोक करके करते फिर पृथ्वी पर आई है। देखो तो वामन देव के चरणों ने अंगूठे ने जहाँ पर छेद किया था वहाँ से गंगा देवी यमुना देवी प्रवेश करती है। उसके बाद में ब्रह्मांड के अंदर भी एक वैकुंठ होता है जिसको ध्रुव लोक कहते हैं। वो ध्रुव लोक को प्रवेश करती है, ध्रुव मंडल में प्रवेश करती है और वहाँ से वो स्वर्ग लोकों के अंदर प्रवेश करती है। फिर सुमेरु पर्वत पे प्रवेश करती है। इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च बड़ा पर्वत हिमालय नहीं है, सुमेरु पर्वत है, उसको स्पर्श करती है। फिर अनेक पर्वतों के शिखरों को तोड़ते हुए यमुना देवी दक्षिण में आती है और वहाँ पर गंगा जी वो अलग हो जाती है। गंगा जी हिमालय जाती है और यमुना जी कालिंद पर्वत पे आती है। ये सब आप नॉर्थ में जाएंगे ना कभी यात्रा करने के लिए चार धाम की, आपको पता चलेगा। इस तरफ जो है वो गढ़वाल क्षेत्र है, उस तरफ है कुमायूं क्षेत्र और इस तरफ से कालिंद क्षेत्र, ऐसे अलग अलग पर्वतों का क्षेत्र है। और वहाँ पर गंगा जी हिमालय जाती है, यमुना जी कालिंद पर्वत जाती है और वहाँ पर अनेक पर्वतों को पार करते हुए प्रकट हो जाती है, इसलिए उसका नाम पड़ा है कालिंदी। यमुना जी का नाम कालिंदी है क्योंकि कालिंद पर्वत से वो प्रकट हुई है। वहाँ से जब ऊपर से आ रही है तो ऊपर के लोगों को दर्शन हो रहा है लेकिन हमारे लिए अदृश्य है वो। कालिंद पर्वत आने के बाद में हमें दर्शन प्राप्त होता है। गंगा जी का भी दर्शन सब लोगों में प्राप्त है। आकाश गंगा ब्रह्मा लोक से लेकर पृथ्वी लोक में आती है, हमारे लिए अदृश्य है। जब गोमुख में आती है तो गोमुख के परे दर्शन नहीं हो रहा है, गोमुख के आगे धारा निकलते हुए दिखाई पड़ रही है, कहाँ से आ रहा है पता नहीं चल रहा है, और वहाँ से फिर दृश्यमान हो जाती है वो, सबको दिखाई पड़ती है। उसके बाद वो हिमालय कालिंद पर्वत के राजीवों को पार करते 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 जमीन के स्तर पर आती है, ग्राउंड लेवल पर, और वहाँ पर दिल्ली में आती है। कहाँ पर, हस्तिनापुर, जिसको उस जमाने में खांडव वन कहते थे, जिसका रूपांतर इंद्रप्रस्थ में बाद में किया गया। उस जगह पे आज भी यमुना बहती है और वहाँ पर यमुना जी का जो पात्र है उसके अंदर यमुना देवी ने तपस्या करना शुरू किया। यमुना जी के पात्र के अंदर इंद्रप्रस्थ में जमीन के अंदर उनकी तपस्थली है, जहाँ पर विष्णु यानी कृष्ण को भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या आरंभ किया उन्होंने। और आगे उसका प्रवाह जो है वो आगे चलता है और वहां जाकर फिर वो वृंदावन क्षेत्र में आता है। और वृंदावन क्षेत्र में आता है तो पूरे वृंदावन को परिक्रमा करके वो बाहर चले जाती है। फिर आगे जाकर कहाँ जाती है, त्रिवेणी संगम, जहाँ पर गंगा जी को दोबारा मिलती है, सरस्वती को भी मिलती है अंडरग्राउंड, वहाँ पर त्रिवेणी संगम का क्षेत्र निर्माण होता है और वहाँ जाकर फिर आगे सागर को मिलती है, वो गंगा सागर कहते हैं, वो भी एक बहुत पवित्र क्षेत्र माना गया है। सॉरी, जमुना जी, जमुना जी आगे जाकर समुद्र को मिलती है, गंगा जी गंगा सागर में मिलती है। एनीवेज, सो इस तरह से आगे त्रिवेणी जाके फिर गंगा सरस्वती को मिलके फिर क्षीर सागर में मिलती है, वहाँ से गंगा जी पाताल में जाती है, लेकिन यमुना जी सप्तद्वीप लोकालोक पर्वत स्वर्गलोक ब्रह्मलोक करके दोबारा ब्रह्म विवर छिद्र से पार करके फिर गौलोक वापस चल जाती है और गंगा देवी फिर आगे जाती है, पाताल लोक में प्रवेश करती है, यहाँ से वो अलग हो जाती है। तो ये हो गया पारलौकिक आगमन यानी ट्रांसेंडेंटल अपीयरेंस ऑफ यमुना इन द मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन एक लौकिक भी अपीयरेंस है उनका। लौकिक का मतलब क्या होता है, कृष्ण भगवान तो अवतार लेते हैं लेकिन वो किसी माता पिता के गर्भ से आते हैं ना, कभी अदिति और कश्यप के पुत्र बनकर आ रहे हैं वामन देव के रूप में, कभी कभी पृष्णी गर्भ और सुतपा के पेट से आते हैं, पृष्णी गर्भ के रूप में पृष्णी और सुतपा के पुत्र में आते हैं, कभी देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में आते हैं। वैसे सूर्य देव जो है वो एक महान देवता है, प्रमुख देवताओं में से सूर्य देवता का नाम आता है। उनका विवाह जो है वो छाया देवी से हुआ और छाया देवी को बहुत डर था पहले से ही कि मेरे पति देव जो है बड़े तेजस्वी हैं, है ना। कभी कभी कोई गांव की लड़की होती है, शहर के बड़े पढ़े लिखे परिवार में, धनी परिवार में जन्म शादी होती है उसकी, तो शादी करने बहुत टेंशन आता है उसको, कह रही मैं तो इतनी सादी लड़की हूँ, इतने बड़े घर पे जा रही हूँ तो कैसे होगा। तो वैसे इनको बहुत टेंशन था कि मेरे पति तो पूरे ब्रह्मांड को लाइट देते हैं, इतने तेजस्वी है वो, उनका तेज मैं कैसे झेल पाऊंगी। वो डर डर के उनके साथ उनका संबंध हुआ तो सूर्यदेव ने कहा कि ये डर डर के संबंध हुआ है हमारा, तो इससे द्वारा जो पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र होगा आपको अभी, और पुत्र जो होगा पूरा विश्व उनसे डरेगा। वो कौन है, यमराज। यमराज यमुना के बड़े भाई हैं, सूर्यदेव के पुत्र हैं, सूर्यदेव को 11 पुत्र हैं टोटल, तो छाया का अग्रज पुत्र जो है वो यमराज है। तो छाया को बहुत दुख हुआ, कह रहे क्यों ऐसा मैंने किया, मेरे तो पति अल्टीमेटली, मैंने शादी की उनसे, डरने का क्या कारण है, डरने का देखो फल क्या हुआ। तो फिर उसने तपस्या की उस तेज को सहन करने के लिए और तेज के तेज को एक्सेप्ट करते हुए भी खुश रहने के लिए, इट्स अ आर्ट टू टेक द हीट एंड लाइट एट द सेम टाइम बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। तपस्या करके अपने मन को तैयार किया। आखिर सबकी सबका रहस्य किसमें छुपा हुआ है, मन में छुपा हुआ है। मन में आनंद है तो दुनिया आनंद भी आनंद दिखाई पड़ती है, मन में दुख है तो लगता है दुनिया में कितना दुख भरा हुआ है, लेकिन दुख इधर है इसलिए सब दुनिया में दिख रहा है। तो भय इधर है इसलिए सब जगह भय दिख रहा है। अगर यहाँ पर भय नहीं है तो अंधेरे में भी कोई डर नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं। तो अगली बार जब उनका संबंध होता है तो कोई भय वय कुछ नहीं, अच्छी तरह से उनका प्रेम संबंध होता है। तो सूर्यदेव कहते हैं इस बार जो इस बार कन्या होगी, और क्योंकि इस बार भय रहित होकर तुमने संबंध किया है, ये कन्या देवी रूप होगी लेकिन नदी रूप भी होगी, देवी रूप में भी होगी और नदी के रूप में भी प्रवाहित होगी, और इसके जल में जो विवाह जो स्नान करेगा या स्पर्श करेगा या चिंतन करेगा या दर्शन करेगा या आचमन करेगा, किसी प्रकार से संपर्क करेगा इससे, तो बड़े भाई के डर से वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। आया समझ में आपको, उसका नाम है यमी, यमी यानी यमुना देवी। तो पत्नी जो है वो शांत हो गई, ठीक है मेरे नलीफाई तो कर दिया मैंने, एक जगह गड़बड़ किया बाद में उसको ठीक कर दिया, उसको बैलेंस कर दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो व्यक्ति यमुना नदी में स्नान करता है उसे यमराज का भय नष्ट हो जाता है। वो यमराज का क्या भय है, क्या भय होना चाहिए, यहाँ पे मनुष्य के अलावा किसी भी जीव के कार्य में कर्म बंधन नहीं होता है, जब शेर हिरण को मार के खाता है उसको हत्या का पाप नहीं लगता है। और कोई भी जीव, जीवो जीवस्य जीवनम, ऐसा भागवत में लिखा है, हर जीव दूसरा जीव का भोजन है। छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है, बड़ी मछली और बड़ी मछली को खाती है, और छोटी सी मछली जो है कीड़े को खाती है, कीड़ा किसी और को खाता है। तो जीव ही जीव का भोजन है, लेकिन किसी भी जीव को दूसरे जीव को भोजन बनाने के बाद में पाप नहीं लगता है, या कर्म लगते नहीं, या बंधन नहीं लगता है, दोबारा भोगने के लिए आना नहीं पड़ता है। मनुष्य का एक ही जीवन है जिसमें जो भी आप कर रहे हो उसके कर्म लगेंगे। ज्ञान भी दिया है, जैसे आप टीवी खरीदते हो ना, एक बुकलेट आता है कि टीवी को ऑपरेट कैसे करना है। बिना टीवी को बुक लेके आप टीवी को ऑपरेट नहीं कर सकते। मोबाइल का भी एक बुकलेट होता है जो इंटरनेट में आता है, उसको पढ़ के हम लोग उसको चलाते हैं। नहीं पता है तो सब फैसिलिटी होगी लेकिन आप यूज नहीं कर सकते उसको। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन को चलाना कैसे है इसका मैनुअल भी आता है, वो मैनुअल भगवद गीता है, शास्त्र है। हाउ टू लिव ह्यूमन लाइफ सक्सेसफुली, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो भी सब कुछ दिया उसके अंदर। किस लिए दिया गया आपको ये, इससे क्या प्राप्त करना है, कर्मों से कैसे बचना है, कौन से कर्म करेंगे तो कौन सा लाभ मिलेगा, कौन से नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, और कौन से करेंगे तो मुक्ति प्राप्त होगी, और कौन से करेंगे तो भगवान के चरण प्राप्त होंगे, ये सब कुछ ज्ञान दिया है। तो इसमें यमराज का भय क्या होता है, जो मनुष्य जीवन के भगवान के द्वारा दिए गए नियमों को उल्लंघन करता है उसका दंड यमराज देते हैं। मृत्यु के समय पर यमदूत आते हैं और वो व्यक्ति को ले जाते हैं, उसके आत्मा को ले जाते हैं और अपने अपने लोक में उसको दंड देते हैं। 27 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है, 14 लोकों के नीचे 27 प्रकार के नरक हैं, जिसमें यमराज अपने दूतों के साथ पापी जीवों को दंड देते रहते हैं। और ये सभी दंडों से हमको बचना है, समझो यमुना जी में स्नान करेंगे वो दंड से हम बच जाएंगे। तो अभी यमुना का जन्म हुआ, यमुना अपने काम में बहने लगी, यमराज को अपने लोक में पोस्टिंग हो गया ना, क्योंकि यमराज भगवान के बड़े भक्त हैं। इसलिए हम यज्ञ करते ना तो ओम श्री यम भागवताय स्वाहा करके उन ग्राम से आहुति देते हैं, और हम सोचते हैं कि भयंकर व्यक्ति हो, किसी कोई व्यक्ति उसका मुंह देखना नहीं चाहता, भगवान कृपा करे और यम का दर्शन न हो, ऐसे हम लोग कहते हैं ना। ही इज नॉट टू बी सीन, नोबडी वांट्स टू सी हिम। फिर भी वो महाभागवत भगवान के भक्त हैं, क्योंकि देखो सब अच्छी अच्छी सेवाएं बाकी लोग ले लेते हैं, जो कठिन सेवा है वो कौन लेता है, जो सबसे योग्य होता है उसको कठिन सेवा दी जाती है। कठिन सेवा क्या है, लोगों को दंड देना। शनि ये भी यमराज का छोटा भाई है, उसके बाद में हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो यमराज जो है वो उसके दंड से और पनिशमेंट से बचना है तो उनकी बहन के जल में आपको स्नान करना पड़ेगा। बहुत आसान तरीका है ना, लेकिन एक बार स्नान करने से सभी पिछला हुआ और पिछला रिकॉर्ड नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा जाके पाप कर सकते हैं, दोबारा स्नान कर सकते हैं, फिर यमुना जी का इफेक्ट नष्ट हो जाता है। यमुना जी का वादा क्या है, मैं आपको सारे पिछले कर्मों से मुक्त कर दूंगी, दोबारा कर्म नहीं करना है, वो गलत काम दोबारा नहीं करना है, मुझे चीटिंग नहीं करना है, मैंने यहाँ मेरा जल रखा है इसलिए पाप करना है जल में नहाना है, पाप करना है जल में नहाना है, इसमें कोई मतलब नहीं होता है। आई विल रिलीज यू फ्रॉम ऑल योर कर्मा प्रोवाइडेड यू डोंट डू इट अगेन, तो ही मैं साफ करूंगी सब। तो एक बार यमुना जी अपने पोस्ट पे काम करने चले गए, यमुना जी का विरह हो गया, बहुत भाई बहन बहुत दिन से मिले नहीं। तो भैया दूज के दिन यानी कार्तिक महीने के शुद्ध पक्ष के द्वितीया के दिन अपने भैया को उसने बुलाया कि भाई एक दिन तो आ जाओ मुझे मिलने के लिए, मैं भोजन बनाऊंगी आपको खिलाऊंगी। तो बिजी भाई जो है ना वो आ गए मिलने के लिए। तो यमुना देवी जो है भगवान के परम भक्त हैं, वैसे भगवान की पटरानी है वो, भगवान की चतुर्थ पत्नी भी है वो, नदी के रूप में भी है, भगवान की चतुर्थ पटरानी भी है, द्वारका में भगवान की पत्नी के रूप में रहती है, वृंदावन में नदी के रूप में प्रवाहित है, ऐसे अलग अलग रोल है उसके यमुना देवी के। भगवान का ही रंग है उसका, सांवले रंग का है, चार भुजाएं उसकी, हाथ में कमल रहता है, गले में कमल की माला पहनती है वो। तो यमुना जी का घर कहाँ है, वृंदावन धाम। तो यमराज जी वहाँ पर आए तो यमुना देवी ने बहुत अच्छा भोजन बनाया, और मन में उसकी बहुत चिंता थी। जब वो प्रवाहित हो रही है, देख रही है दुनिया के सब लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में फंसे हुए हैं, सब लोग दुख भोग रहे हैं, तो उनके कष्ट और पीड़ा को देखकर उनको बड़ा करुणा आ रही थी मन में। और ये भी जानती थी कि मेरे भाई जो है वो उनको सबको दंड देते हैं, ये लोग अज्ञान में पाप करते हैं और इनके दूध मेरे भैया के दूध पकड़ पकड़ कर उनको देके जाते हैं मेरे भैया के दरबार में, वहाँ से फिर न्याय होता है और वहाँ से कहाँ कहाँ लेके जाके उनको बहुत पीसते लोग। तो उनको बहुत दुख हो रहा था, तो एक तो भैया के वेरा का कारण था, लेकिन दूसरा कारण था कि उनको एक निवेदन भी देना था उनको। तो भैया आए, उनका सेवा किया, प्रसन्न किया उनको, और तो बहन जी ने कहा कि मैं आपसे वरदान चाहती हूँ, वो कैसे भी करो आप ये सब जीवों को ना ये कर्मों के बंधन से मुक्त करा दो। तो भाई साहब कहते हैं बहन जी आपने बहुत कठिन वर मांगा है, मेरा रोल है भगवान की सेवा में कि लोगों को पाप होगा तो उनके दंड देना है सुधारने के लिए, लेकिन पाप का दंड देना मेरा काम है, पाप को डिलीट करना मेरा काम नहीं है, उतना अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। पाप को डिलीट करने का अथॉरिटी केवल विष्णु के पास है, वो चाहे तो डिलीट बटन दबा सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। बहुत भाई बहन गिड़गिड़ाती है, प्लीज़ प्लीज़। तो आखिर में कहते मेरे अधिकार में एक बात मैं हूँ है, क्या होता ना, समझो आप रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के कमिश्नर हो, समझो आप भी ऊपर के मंत्री के रूल से बद्ध हो, आपको बहुत सारा रूल फॉलो करना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ बीच में अधिकार होता है कि आपको लाइन के बिना कार्ड दे सकते हैं, है ना। पासपोर्ट ऑफिस में आपको जाना है, वहाँ के आप अधिकारी हो तो आपको टाइम नहीं, आप बहुत बिजी हो, आप उनको जानते हो, अब आपके चचेरे भाई है तो बोलेंगे आप 3 बजे आ जाओ मेरे ऑफिस में, आ जाओ चाय कॉफ़ी पियो, तब तक आपका पासपोर्ट बन जाएगा। वो सब लाइन वाइन लगाने की जरूरत नहीं, एजेंट की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, मैं सब बैठे बैठे करा दूंगा आपका, उतना उसके अधिकार में होता है। तो यमराज जी का एक मेरा हाथ में अधिकार है, वो ये है कि मैं आपको इतना वरदान दे सकता हूँ आज के दिन, यानी भैया दूज के दिन, जिस दिन भैया दूज, मतलब यम द्वितीया कहते हैं उसको, नाम पड़ा उसका यम द्वितीया, यम दूज। आज के दिन अगर कोई भाई और बहन हाथ पकड़कर जमुना जी में वृंदावन में स्नान करेंगे तो अपने सारे पिछले कर्मों से मुक्त होंगे और बहन भाई दोनों भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। क्या क्या कंडीशन बताया मैंने आपको, भाई बहन होना चाहिए, हाँ, और वो वृंदावन में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप वो दिल्ली में हस्तिनापुर के पास स्नान करोगे या यमुनोत्री में करोगे, वो वरदान नहीं दिया है, वृंदावन में ही आना पड़ेगा आपको, जहाँ पर वृंदावन में जमुना जी घूम रही है। और हाथ पकड़ के 3 कम से कम डुबकी लगाना है जमुना जी में। और एक बताया उन्होंने कि उस दिन भैया को केवल बहन के हाथ का भोजन करना है और किसी के हाथ का नहीं करना है। ये कंडीशन फॉलो करेंगे तो वो व्यक्ति जीवन के अंत में भाई और बहन दोनों भगवत धाम प्रवेश करेंगे। इसलिए भैया दूज का बहुत महत्व है। उधर एक घाट है, विश्राम घाट, जहाँ पर कंस को मारने के बाद कृष्ण ने विश्राम किया था, जहाँ पर हिरण्याक्ष को मारने के बाद वराह भगवान ने विश्राम किया था, वहाँ पर भूमि देवी ने भगवान से उपदेश सुना था, उस उपदेश का ग्रंथ रूप में अवेलेबल है, उसका नाम है आदि वराह पुराण, जो विश्राम घाट में कहा था। आज भी उधर 80-80, 90-90 साल के बुढ़े बुढ़ी भाई बहन हाथ पकड़ के भैया दूज के दिन स्नान करते हैं, ऐसा महात्म्य है उसका। तो यमुना देवी बहुत करुणा वाली है, बहुत ज्यादा करुणा वाली है। अभी हम यमुना देवी का थोड़ा महात्म्य पढ़ेंगे। यमुना देवी श्याम वर्ण की है, चतुर्भुज है, उनके नेत्र बड़े तेजस्वी है, जैसे खिले हुए नील कमल जैसे, वो परम सुंदरी है, वो दिव्य रथ पर बैठकर विहार करती है। और जो भी व्यक्ति पाप करता है, जिसकी बुद्धि दूषित हो गई है, दूसरों के साथ बहुत तर्क करता है, तो यमुना जी उसको भी श्री वृंदावन धाम का वास दे सकती है अगर उसका वो स्मरण करता है। यमुना जी के हर एक बूंद में श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त कराने की शक्ति है, श्री गोविंद के दिव्य दर्शन यमुना जी के हर बूंद में हो सकते हैं। यमुना जी का निर्माण श्री कृष्ण के बाएं कंधे से हुआ है, फ्रॉम लेफ्ट शोल्डर। वो विरजा नदी को, प्रवाह को काटती है और ब्रह्मांड को छेद करके प्रवेश करती है। शी इज द रोप टू कम आउट ऑफ द डीप डार्क वेल ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। अगर इंद्रिय भोग के जंजाल से किसी को मुक्त होना है तो यमुना जी आपको मुक्त कर सकती है। केवल यमुना का नाम श्रवण करते ही अनंत पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। बोलो सब लोग यमुना देवी की, बोलो यमुना देवी की जय। यमुना के नाम कहना जरूरी है, जय तो सब लोग कहते हैं, यमुना देवी का नाम उच्चारण करेंगे तो आवश्यक है। Wherever the most beautiful Yamuna who is very dear to Sri Krishna, जहाँ भी यमुना जी का दर्शन होता है वहाँ यमुना बहती है, she makes it very auspicious for Mother Earth and human beings, they become very fortunate. यमुना जी जहाँ पर भी बहती है उस भूमि को पवित्रता प्राप्त होती है, वो तीर्थ क्षेत्र बन जाता है, वहाँ के जीवों को वो बहुत कल्याणकारी होता है। यमुना जी जहाँ जहाँ बहती है उसके पीछे पीछे भंवरे मोर कोयल गाते गाते घूमते हैं। अगर कोई व्यक्ति को इतने जिह्वा प्राप्त हो जाए जितने शरीर पर बाल हैं, शरीर में कितने बाल हैं पता है किसी को? 3.5 करोड़ एवरेज एवरी ह्यूमन बीइंग हैज। उतने अगर जिह्वा आपको निर्माण हो गई, आपके पास एक ही जिह्वा है ना, अभी एक ही जबान है, उतने भी जिह्वा हो गई तो भी इस जीवन में हम यमुना जी का गौरव पूर्ण नहीं कर सकते हैं। यमुना जी की इतनी महिमा है कि इतनी जिह्वा होने पर भी, जीवन भर कहने पर भी उसका गौरव का बखान पूर्ण नहीं हो सकता है। वन हु ग्लोरीफाइज यमुना मेडिटेट्स ऑन हर विल अटेन श्री कृष्णाज क्लोजेस्ट एसोसिएशन। श्री कृष्ण का परम निकट सान्निध्य यमुना जी को केवल स्मरण मात्र से होता है। तो यमुना जी को हम कितनी प्रकार से स्पर्श, कितनी प्रकार से संपर्क कर सकते हैं? जैसे यमुना जी का नाम उच्चारण किया हमने, है ना, तो एक एक तरीका हो गया, संपर्क हो गया। यमुना जी का स्मरण किया, कभी यमुना जी गए थे तो उसका आपको याद है, यमुना जी का दर्शन मन में स्मरण किया, या यमुना जी के पास गए और यमुना जी के पात्र को देखा आपने, यमुना जी बह रही है, आप गाड़ी से जा रहे हैं, ऊपर से यमुना जी का ब्रिज से आप यमुना जी को देख रहे हो, या यमुना जी के विषय में आप सोच रहे हो कि यमुना जी के पास भगवान ने कितना लीला किया, भगवान ने कालिया का दहन किया, कितनी सारी लीलाएं की, या तो यमुना जी को आप स्पर्श करेंगे, या तो यमुना जी का आचमन करेंगे, केशवाय नमः, नारायण नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, ऐसे आचमन करेंगे, संध्या करेंगे, या तो स्नान करेंगे उसके अंदर, या तो यमुना किनारे के किनारे में बैठकर आप भगवान का नाम का भजन करेंगे, या यमुना किनारे बैठकर कोई और भागवत श्रवण, गीता श्रवण, पुण्य श्रवण करेंगे, किसी भी प्रकार से यमुना का श्रवण करेंगे तो पापों का राशि नष्ट हो जाती है। किसी किसी को सर्दी है, बुखार है, समझो निमोनिया हो गया है, तो उस ठंड में स्नान नहीं कर सकता है, तो जल को स्पर्श करने मात्र से भी लाभ होता है। आचमन को भी स्नान का भाग्य प्राप्त होता है, अगर आप ढंग से आचमन करेंगे ना, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः स्नान करेंगे तो भी स्नान करने का लाभ प्राप्त होता है। यमुना जी का एक वैशिष्ट्य है, यमुना जी वगैरह ये सब लोग नीचे आने को तैयार नहीं है, नोबडी वांट्स टू कम डाउन, क्योंकि यहाँ पर सब लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए हैं, यहाँ पर सब लोग पाप करने की वजह से, पाप के कर्मों में बंधन प्राप्त होने से जन्म ले रहे हैं बार बार। जैसे आपको कहेंगे माता जी आप 2 महीने जेल में रहिए, येरोडा जेल में रहिए, आपका एक रूम का व्यवस्था कर दिया है, बहुत बढ़िया एसी लगा दिया है, प्रसाद भी टाइम पे आ जाएगा, जप करने की सुविधा है, अटैच बाथरूम है, अच्छा बिस्तर भी है, लेकिन वो सब जेल के अंदर एक कमरा मिलेगा आपको, 2 महीना रहो आप, तब क्या करेंगे? बोले नहीं रहना है, यहाँ मेरी झोपड़ी अच्छी है गाँव की, उधर नहीं रहना मुझे, क्योंकि वो जेल के अंदर कौन जाएगा, सब गुनहगार रहते हैं वहाँ पर, सब लोग पत्थर तोड़ते रहते हैं, दंड मिलता है उनको, बहुत सख्त व्यवहार होता है उनके साथ, और सभी बुरे चरित्र के लोग वहाँ रहते हैं, तो आप कितनी भी सुविधा का प्रलोभन देंगे तो जेल के अंदर जाने का आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। उसी तरह से भौतिक दुनिया वो दुर्ग है, वो जेल है, जहाँ पर सभी लोग भगवान को छोड़कर आते हैं और यहाँ रहकर अपने अपने कर्म करते रहते हैं और उसका फल भोगते रहते हैं। तो ये सुंदर नदियाँ जो है वहाँ से आना नहीं चाहती है, तो भगवान ने इनको प्रलोभन दिया है कि जहाँ जहाँ आप भोग बहोगी वहाँ वहाँ लोग उसमें स्नान करेंगे, सब लोग पाप से मुक्त हो जाएंगे, आपके किनारों को तीर्थ क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। तो बोले नहीं, हम लोग क्यों नहीं जाना चाहते, पता है हमको, क्योंकि जब ये पापी लोग आके स्नान करेंगे हमारा पाप से वो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन उनका पाप मेरे में छोड़ के जाएंगे, तो आई विल बी फिल्ड विद कर्मा, वो लोग तो फ्री हो जाएंगे, उनका लाभ हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, तो हमारे पाप को हम कहाँ पर धुलाएं। तो भगवान ने कहा डोंट वरी, मेरे परम संत भी आप में स्नान करेंगे, मेरे परम संत संत आप में सब स्नान करेंगे, तो आप में जो जमा किया वो पाप है वो सब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और भी एक उनको उपाय बताया, वो है कि अक्षय तृतीया के दिन आप नंदगांव चले जाना। नंदगांव में एक सरोवर है, नंद सरोवर, ध्यान से सुनिए, वहाँ पर नंद बाबा रोज सवेरे स्नान करते हैं, यशोदा मैया भी स्नान करती है, उनका प्राइवेट कुंड है वो नंद सरोवर, राजा का कुंड है, कृष्ण के पिताजी का। अक्षय तृतीया के दिन वहाँ पर जाके स्नान करोगे तो साल भर में जितने भी पाप इकट्ठा किए हैं वो सब वहाँ धुल जाएंगे, और पाप इकट्ठा होने से क्या होता है, इनका तेज भी नष्ट होता है, ये निस्तेज हो जाते हैं। तो साल में एक दिन वो सभी नदियाँ, जितने भी तालाब, जितने भी पवित्र क्षेत्र हैं, जलमय क्षेत्र हैं, वो सभी देवी देवता जो है वो पावन सरोवर मतलब नंद सरोवर में आके स्नान करते हैं और अपना तेज पुनः प्राप्त करते हैं, अपना सारा पाप वहाँ पर छोड़ देते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा पावन सरोवर। यानी लोगों को पावन करने वाले देवी देवताओं को भी पावन करता है। कुछ होते हैं टीचर और कुछ होते हैं टीचर ट्रेनर्स, जो टीचर को ट्रेन करते हैं, है ना, सिखाने के लिए। तो वैसे ही नदियां सबको पावन करने वाले होती है, लेकिन वो पावन करने वाले नदियों को भी पावन करने वाला कोई जगह है जहां पर वो खुद जाके अपने आप को पावन कर लेते हैं, वो है पावन सरोवर। ऐसे सब उनको प्रोविजंस देके भगवान ने कन्विंस किया तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारा वहाँ होना जरूरी है, नहीं तो मेरे से बिखरे हुए लोग जो है वो पाप ही करते रहेंगे, कभी मुक्त नहीं होंगे उससे, थोड़ा सा छूट आपको देना पड़ेगा उनको जाके ऑन माय बिहाफ। तो ये राजी हो गए। तो जहाँ कालिंदा पर्वत से वो निकल रही है या गौमुख से गंगा जी निकल रही है, तो सब जगह पर जितने किनारे हैं, 2500-3000 किलोमीटर का उनका प्रवाह है, वो जितने भी किनारे हैं वो सब तीर्थ क्षेत्र हैं, वहाँ पर कोई भी स्नान करेगा पाप से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जब यमुना देवी ये सारा अंतर पार करते हुए दिल्ली होते हुए, दिल्ली से आगे 150 किलोमीटर चलते हुए जब वृंदावन धाम में प्रवेश करती है तो कुछ अलग परिणाम होता है। अभी वो केवल पाप को नष्ट नहीं करेगी, अभी पाप के साथ पुण्य भी नष्ट करेगी। एक दिन हमारे प्रभुपाद जी केशी घाट है, वहाँ पर केशी घाट है नहीं, यमुना के अंदर का घाट है जहाँ पर भगवान ने केशी राक्षस का वध किया था, तो वहाँ पर प्रभुपाद जी तो बुजुर्ग हैं, 80 के ऊपर है, 70 के ऊपर है, और जो डिसाइपल उनके बने हुए हैं वो सब लोग 20-21 साल के जवान लड़के हैं। तो यमुना जी में स्नान करने का प्लान हुआ तो सब लोग गए और भाग के फटाफट कपड़े उतार कर जंप कर दिया पानी में उन्होंने, और पूरा डुबकी लगाने लगे, पानी स्लैश करने लगे, स्विमिंग करने लगे, बहुत आनंद लेने लगे। और प्रभुपाद जी बुजुर्ग गए तो धीरे धीरे कपड़े उतारने लगे अपने, है ना, आपको बूढ़े व्यक्ति को टाइम लगता है वही काम करने के लिए। तो प्रभुपाद जी कपड़े निकालते बोल रहे हैं, यमुना जी इज वेरी मर्सीफुल, इन अदर प्लेसेस शी टेक्स अवे ऑल द सिंस, बट इन वृंदावन शी टेक्स अवे ऑल द पुण्य ऑल्सो। बाकी जगह पर यमुना जी पाप को हरण कर लेती है, लेकिन वृंदावन धाम में जब यमुना जी में स्नान करते हैं तो पाप के साथ पुण्य को हरण कर लेते हैं। सब लोग पानी से भाग के बाहर आ गए, अरे पाप पुण्य नहीं छोड़ना है हमको, उनको लगा पुण्य रखना चाहिए पाप छोड़ना चाहिए, तो ये तो पाप और पुण्य दोनों को ले रही है, तो नुकसान कर रहे, तो भाग गए आगे। तो प्रभुपाद जी कहा कि पाप और पुण्य दोनों ही नुकसानकारी है। हम लोग को लगता है कि पाप नुकसान वाला है क्योंकि उसको दंड मिलता है, लेकिन पुण्य करने से सुख मिलता है स्वर्ग में। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी ने वहाँ पर समझाया है लोगों को कि अगर आपको चॉइस दिया जाए पाप और पुण्य के बीच में तो क्या चुनेंगे आप क्या चुनेंगे? पाप करने से पाप का फल नरक में मिलेगा, पुण्य करने से पुण्य का फल जो है वो स्वर्ग में मिलेगा, और स्वर्ग में बहुत लंबी आयु होती है, वे लाखों वर्ष की आयु होती है, बहुत सुख होता है वहाँ पर। बट जब व्यक्ति को दुख होता है, पाप के फल भोगते हुए कोई कष्ट होता है, तो उसको भगवान की याद आती है, या भगवान को याद आने की संभावना है। इट्स पॉसिबल टू रिमेंबर गॉड व्हेन यू आर सफरिंग, ओ गॉड वेयर आर यू, आई एम सफरिंग, प्लीज सेव मी। लेकिन जब सुख होता है तो भगवान को याद नहीं कहते हैं, है ना। दुख में सिमरण करे सभी, सुख में करे न कोई, अगर सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए, सब लोग दुख में ही स्मरण करते हैं भगवान का, कोई सुख में भगवान को, जो आनंद भोगता है ना अभी, किसी को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, किसी का बिजनेस 500 करोड़ का हो गया, किसी का नया बंगला 5 जगह पर हो गया, तो कहते हैं भगवान की जरूरत क्या है, एवरीथिंग इज फाइन, आई डोंट नीड गॉड, तो भगवान की याद नहीं आती है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से, फ्रॉम द स्पिरिचुअल एंगल अगर आप सोचेंगे, तो हमको पता चलेगा कि अगर किस चीज़ में भगवान की याद आती है वो चीज़ ऑस्पिशियस है। वॉट एवर रिमाइंड्स यू ऑफ गॉड इज ऑस्पिशियस, भले वो दुख हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, एंड वॉट एवर मेक्स यू फॉरगेटफुल ऑफ गॉड इज इनऑस्पिशियस। अगर आपको कोई चीज़ भगवान की याद को नष्ट कर देती है तो वो ऑस्पिशियस, पवित्र नहीं है, वो शुभ नहीं है। ये संतों का दृष्टिकोण है, द स्पिरिचुअल एंगल टू सी थिंग्स। इसलिए पैसा बहुत आ गया तो लोग आपको वाह वाह करेंगे, वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको लॉटरी लग गई, आप करोड़पति बन गए, कौन बढ़ेगा करोड़पति में गए और 1 करोड़ जीत के आए, बधाई हो आपको। लेकिन उससे अगर भगवान को भूल रहे हो तो 1 करोड़ आपका नुकसान करेगा। भगवान की याद आई तो ठीक है, अच्छा है। तो हम सब लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए कुंती देवी वो हिम्मत कर सकती है, भगवान के सामने बोल रही है, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, वो कह रही है भगवान आप हमको बार बार कष्ट भेजना, इतने कष्ट आपने जीवन में दिए लेकिन हर बार आपने आके हमको बचाया। इसका मतलब जब कष्ट होते हैं हम आपको पुकारते हैं, आप आ जाते हैं, आप कष्ट दूर कर देते हैं। अभी कष्ट खत्म हो रहे हैं, मेरे बेटे राजा हो रहे हैं, सुखी सुख आएगा, हम आपको नहीं पुकारेंगे, आप चले जाएंगे, देखो आप जा रहे हो अभी, हमको छोड़कर द्वारका जाने का प्लान बना रहे हो। जब तक हम कष्ट में थे तब लोग यहीं पर थे, आप यहीं रहते थे हमारे साथ, हम आपके भक्त हैं, आपका दुख हमारा दुख आपको सहाने जाता था, इसलिए आपने यहीं पर अपना निवास बनाया था। अभी तथाकथित हमारा दुख समाप्त होने को जा रहा है, मेरे बेटे राजा बनने जा रहे हैं और आप तुरंत अपना रथ निकाल कर द्वारका जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। इसलिए विपदा संतुता शश्वत, बार बार उन दुखों को भेजो ताकि आप हमारे साथ ही रहो, क्योंकि इम्पोर्टेंट सुख और दुख का नहीं, इम्पोर्टेंट आपके होने का है। और आपकी याद बड़ी अच्छी तरह से दुख में ही आती है, इसलिए दुखी देना अच्छा है। इसलिए अगर आपको कोई बार्गेन किया गया ना, आपको क्या चाहिए, सुख चाहिए, पुण्य चाहिए कि पाप चाहिए, तो बोलना पाप ही अच्छा है, क्योंकि पाप का फल भोगते भोगते उनकी याद तो आती है कम से कम। लेकिन अब तीसरी बात है, एक यमुना जी में वृंदावन में स्नान करने से पाप के साथ पुण्य भी नष्ट होता है, लेकिन यहां पर उसकी कृपा समाप्त नहीं होती है। वृंदावन में यमुना जी के अंदर स्नान करने से प्रेम और भक्ति की प्राप्ति होती है कृष्ण के लिए। शी गिव्स लव एंड डिवोशन टू कृष्णा इफ यू टेक बाथ इन यमुना इन वृंदावन धाम। इसलिए कार्तिक महीने में अभी ये चल रहा है ना उत्सव, दामोदर मास का, सब लोग वृंदावन जाते हैं और यमुना जी में स्नान करते हैं, क्योंकि वो पाप और पुण्य के साथ प्रेम भक्ति का दान देती है, वो सब छीन लेती है, जो बांधने वाली चीजें हैं ना, चाहे स्वर्ग लोक में जाकर जिएंगे वहां पर भी जन्म मृत्यु के बंधन में फंस जाएंगे, नरक में जाकर कष्ट भोगेंगे वहां पर भी जन्म मृत्यु है। आप ब्रह्मा भुवनार लोका परावर्तिनो अर्जुना, ब्रह्मा लोक से लेकर पाताल लोक तक सब जगह पर जन्म मृत्यु का बंधन है, उससे मुक्त होने के लिए हमको प्रयास करना है। तो यमुना जी उसको मुक्त करने के लिए भगवान की प्रेम भक्ति की आवश्यकता है, वो प्रेम भक्ति भगवान की यमुना देवी हमको देती है। इसलिए यमुना जी का दर्शन करने से, स्पर्श करने से, आचमन करने से, स्नान करने से, याद करने से क्या लाभ होता है, भगवान की प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। तो हम लोग क्या देखते हैं, अरे कितना गंदा पानी है, सब लोग कुछ कुछ कर रहे हैं उसके अंदर, कौन स्नान करेगा इसके अंदर, वो सब बाह्य दृष्टि है। आध्यात्मिक दृष्टि यह है कि यमुना जी का जल कभी भी अस्वच्छ नहीं होता, आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ पावर रखता है वो अपने अंदर। यमुना जी का तो अभी क्या बताऊं आपको, यमुना जी इतनी दयालु है, आप अगर जा नहीं पाते, समझो आप बहुत बिजी हो, रोज स्नान तो करते हो ना, आप बाल्टी से करते हो या शावर से करते हो, जब पहला शावर बॉडी पे आता है या तो पहला लोटा लेकर डालते हैं ना, यमुना यमुना कहना, आप यमुना जी उसमें प्रवेश करेगी आपके लोटे में, आपको स्नान कराएगी, गंगा गंगा कहना तो गंगा जी आ जाएगी। ये सब नदियों की कृपा है, हम लोग तो हर एक मग में नाम लेते हैं, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी इंद्रायणी ताप्ती, सब ऐसे लेके ही स्नान करते रहते हैं, हर एक मग पे नाम लेते हैं, रोज तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, स्मरण मात्र से, स्मरण शक्ति मात्र से। तो आप बताइए और कितना डिस्काउंट चाहिए आपको, इतना हाईएस्ट डिस्काउंट दे चुका है फिर भी बोलता है प्रेमी दे दो, ऐसा नहीं होता है ना, थोड़ा प्रयास तो हमारे तरफ से होना चाहिए। याद तो सुबह आप कर सकते हैं ना स्नान करने के समय, और आदत लगेगी ना तो आपको अपने आप याद आएगी, पहले मग पे ही गंगा जी का नाम लेंगे आप, ऐसा है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, यमुना जी कितनी, अभी और एक कथा आती है इसमें, खांडव वन में क्या लीला हुई थी, वो कौरवों ने ना पांडवों को चीटिंग किया था, डिवीजन करने का प्लान हुआ था, तो उन्होंने कहा ठीक है खांडवन दे देते उनको, पूरा लंबा चौड़ा खांडव वन है, मतलब क्या मन में क्या बोल रहे हैं, जिंदगी भर पेड़ काटते रहो, इतना बड़ा वन है वो, क्या बनेगा उसमें, कुछ भी नहीं बनेगा, और पूरा जो बना बनाया राज्य है वो ले लिया, खांडव वन इनको दे दिया। तो भगवान का कैसा होता है, आपके जीवन में अगर आप भगवान के भक्त हैं, आपके जीवन में कितनी भी दुर्दैवी घटना हो गई ना, उस दुर्दैवी घटना को भगवान सुदैव में बदल देते हैं, गॉड विल टर्न योर मिसफॉर्चून इनटू फॉर्चून। तो भगवान गए अर्जुन के साथ में, पूरा वन एक दिन में जला दिया, और विश्वकर्मा को बुलाया, नहीं सॉरी उधर मय दानव था उसके अंदर छुपा हुआ, वो शरण आ गया अर्जुन को और भगवान को, क्योंकि भगवान ने अग्नि के मुख में दिया, पूरा अग्नि ने पूरा स्वाहा कर दिया उसको, पूरा जंगल स्वाहा कर दिया। तो तक्षक नाग और मय दानव सब वो छुपे हुए थे जंगल में, बाहर आ गए, जल रहे थे, तो भगवान के शरण में आ गए, भगवान ने उनको अभिदान दिया, तो भगवान ने मय दानवों को बताया कि यहाँ पर इंद्रप्रस्थ खड़ा करो, उसमें एक सभा बना दो ऐसी, मय सभा, जादुई सभा, मिरेकुलस असेंबली। तो ये सब हुआ ना, जला जला के हो गया, शरणागति दिया, मैदानों को ऑर्डर दे दिया, और भगवान अर्जुन दोनों थक गए थे, बैठे थे, भगवान ने पेड़ के सहारे बैठे थे, अर्जुन को कहा अर्जुन जाओ यमुना जी का जल लेके आओ, वही खांडव वन है ना इंद्रप्रस्थ। तो जब जल लेने गए तो वहाँ पर एक सुंदर युवती चलते हुए नजर आई, बहुत सुंदर युवती, युवा अवस्था, देख के लग रहा है कि अविवाहित है। तो अर्जुन ने पूछा हे युवती तुम कौन हो, यहाँ पर अकेले में कैसे घूम रही हूँ। तो युवती कहती कि मैं यमुना हूँ, मेरे पिता सूर्यदेव ने मेरे ही जल के नीचे एक मुझे कुटी बना के दी है, उस कुटी में बैठकर मैं तपस्या करती हूँ, क्यों, मेरे विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ अर्जुन को उसको देखकर, भगवान के लिए जल लिया और पहुँचा दिया, और कहा कि मैंने वहाँ पर एक कन्या का दर्शन किया, और वो कन्या जो है आपका नाम लेती है और खुद को यमुना कहलाती है। तो भगवान झट से उठे, उधर गए, उस कन्या से मुलाकात किया, उसका हाथ ग्रहण किया, और उसको पति के रूप में, पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, और आगे जाकर द्वारका में उसका विवाह हो गया भगवान के साथ। तो ये कहानी इंद्रप्रस्थ की है, इंद्रप्रस्थ की यमुना जी के प्रभाव में भी सुंदर लीला हुई है, जहाँ पर भगवान और यमुना जी का विवाह हुआ है। अभी वृंदावन धाम में, अभी बहुत समय खत्म हो गया, मैं आपको खाली एन्यूमरेट करता हूँ कि भगवान की लीला में से 90% लीलाएँ जो है यमुना किनारे हुई है। यमुना वृंदावन की, कृष्ण की लीलाओं का एक अविभाज्य अंग है, उसके प्रेजेंस के बिना लीला संपन्न नहीं होती। देखो कालिया का मर्दन कहाँ किया, यमुना जी में किया, केशी का वध किया कहाँ किया, केशी घाट के किनारे किया, रास लीला कहाँ किया, बंसीवट में यमुना किनारे भगवान ने रास मंडल पर रास लीला किया, सर्वोच्च लीला है भगवान की, वो प्रेम प्रकट करने की, वो कहाँ संपन्न हुई, यमुना किनारे। चीरघाट, भगवान ने गोपियों के वस्त्र छीने, कहाँ पर छीने, यमुना किनारे। और इमली तला, भगवान वहाँ पर कृष्ण के रूप में जप किया करते थे, राधा रानी का नाम लेते थे, तो यमुना किनारे बैठते थे वहाँ पर जप करते समय, इमली के पेड़ के नीचे। तो भगवान सांवले रंग के थे, राधा रानी का नाम लेते हुए वो गौरी रंग के बनते थे वहाँ पर, गौर वर्ण धारण करते थे। अब जब गौरवर्ण धारण करके आए चैतन्य महाप्रभु, वो भी इसी जगह बैठकर जप करते थे, तो गौरवर्ण वाले चैतन्य महाप्रभु सांवले हो जाते थे। ये स्थान अभी भी यमुना किनारे पे उपस्थित है, वहीं पर राधा रानी का अभिषेक हुआ था और वृंदावनेश्वरी के नाम पे उनको घोषित किया गया था। फिर अक्रूर घाट, ये बहुत दिव्य स्थान है, यहाँ पर अक्रूर जी को भगवान के वैकुंठ का दर्शन हुआ था। कृष्ण बलराम को जब वृंदावन से मथुरा लेने के लिए आए ना वो, तो उन्होंने उधर हॉल्ट लिया, कहते मैं थोड़ा स्नान करता हूँ, स्नान करने जमीन में पानी में डुबकी लगाई तो अंदर शेषशाही नाग और भगवान विष्णु का दर्शन हुआ, और चेहरे तो कृष्ण बलराम के थे उनके, तो बोले बच्चे बहुत नटखट है, अभी तो रथ में बैठे हुए पानी के नीचे कैसे आ गए, वो बाहर आके देखा तो रथ में बैठे हुए, फिर डुबकी लगाए फिर पानी के दर्शन हुआ, और बच्चे हंस रहे, अरे ठीक हो ना तुम लोग, हाँ हाँ चाचा जी आप स्नान करना, हम लोग बैठे हैं, आप आ जाना स्नान करके। दो तीन बार डुबकी लगाई तो हर बार विष्णु कृष्ण विष्णु बने हुए और बलराम जी अनंत शेष बनकर उनको शैया बना रहे हैं उसके। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आगे वृंदावन का वातावरण समाप्त हो जाता है और वैकुंठ का वातावरण शुरू होता है। अभी तक तो कृष्ण बलराम थे, आगे जाकर विष्णु और शेषशायी बलराम बन जाएंगे। वो सुंदर लीला जो है अक्रूर घाट की, ये भी जमुना के अंदर ही हुई है। जमुना के अंदर क्या हुआ था, वरुण देव के सैनिक ने नंद बाबा को अरेस्ट किया था, एकादशी का स्नान उन्होंने रॉन्ग टाइम पे किया था ऐसा कैलकुलेशन कहता है। तो इसलिए वरुण देव को एक वरुण देव का सैनिक आकर उसको अरेस्ट करते हैं और वरुण लोक लेके जाते हैं। तो भगवान ने यमुनाज में छलांग लगाई है, वरुण लोक में जाकर नंद बाबा को वो रिहा करके लेकर आए हैं। ये लीला भी अंबिका वन में हुई थी। राम घाट जहाँ पर बलराम जी ने यमुना जी के बहुत धाराओं में विभाजन किया था, ये बिहार वन के पास है। यमुना को पास बुला रहे थे बलराम जी, तो यमुना जी आने को तैयार नहीं थी, तो उन्होंने हल उठाया और यमुना जी के पात्र को अनेक धारा में विभाजित कर दिया। तब यमुना जी भाग के आई है बलराम जी के पास, क्षमा करना मैंने आपको पहचाना नहीं, आप तो भगवान हैं, अनंत शेष का अवतार हैं। और फिर बहुत सारे वस्त्र और नीले अलंकार उन्होंने बलराम जी को भेंट किए हैं यमुना देवी ने। फिर विश्राम घाट यमुना जी का घाट पे वराह देव ने पृथ्वी देवी को आदि वराह पुराण सुनाया है, विश्राम भी किया है। कृष्ण ने कंस को मारने के बाद में वहाँ विश्राम किया है। वहीं पर भाई बहन स्नान करते हैं और अपने जीवन का मोक्ष प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड घाट यमुना किनारे भगवान ने मट्टी खाई और मैया को मुख में ब्रह्मांड दर्शन कराया, ये भी यमुना किनारे पर लीला हुआ है। यमुना कितनी प्रिय है भगवान को पता है आपको? सबसे पहले जन्म लिया मथुरा में और बाहर निकले और कहाँ आए? यमुना तट पे आए और अपने बाबा के हाथ से गिरे यमुना जी में। वो यमुना जी बहुत उत्सुक थी उनको चरण छूने के लिए, ऊपर 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 आ रही थी, इनको भी अपने चरण स्पर्श देने की इच्छा थी, तो छलांगी लगाई पानी के अंदर। मतलब जन्म लेते ही यमुना जी को चरणामृत जल बना दिया उन्होंने। चरणामृत कैसे बनता है? जब भगवान को किसी जल में स्नान कराते हैं ना, तो जो पानी नीचे गिरता है उसको चरणामृत कहते हैं। उसको प्राप्त करने से जन्म जन्मांतर के बंधन और पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यमुना जी में छलांग लगाकर जन्म लेते ही यमुना जी को अंग संग दिया उन्होंने और अनंत बार यमुना जी में जल क्रीड़ा, नौका विहार और बच्चों के साथ स्नान, गायों के साथ स्नान, गोपियों के साथ स्नान, रासलीला में स्नान, थकने के बाद में स्नान, रासलीला के बाद थकने के बाद स्नान, गौचारण होने के बाद स्नान, यमुना किनारे बैठकर वो भोजन किया करते थे ग्वाल वालों के साथ कमलाकार बैठकर। इसलिए यमुना के बिना उनकी लीला संपन्न नहीं होता है। गौचारण कहाँ किया? यमुना किनारे किया। यमुना किनारे में ये सब ग्वाल बाल कृष्ण बलराम मेंढक बनकर कूदते थे, डाली में चढ़कर वहां से छलांग लगाते थे, हर प्रकार का गेम खेलते थे। राधा रानी का जन्म भी यमुना जी के अंदर हुआ है। रावल में यमुना जी के अंदर सुंदर स्वर्ण कमल के अंदर भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म भोर के समय पे यमुना जी के अंदर हुआ था। फिर उनके पिताजी उनको लेकर आए थे। यमुना जी के तट पर राधा रानी ने कृष्ण भगवान को डांस सिखाया है, डांस क्लासेस एट द बैंक ऑफ यमुना। भगवान को मुरली भी राधा रानी ने सिखाई है यमुना किनारे कदम के तले। कृष्ण बहुत चालाक थे, राधा रानी के स्टूडेंट बनकर आते थे और डांस में वो कुछ सिखाती थी कदम, वो तो इतने होशियार है तुरंत पकड़ लेते थे, लेकिन जानबूझकर रॉन्ग स्टेप डालते थे वो, क्योंकि अगर मैं तुरंत सीख लिया तो क्लास जल्दी समाप्त हो जाएगा, तो राधा रानी के साथ बहुत कम समय मिलेगा। अगर गलत गलत करते रहूँगा तो लंबा सिखाएगी, एक क्लास लंबा चलेगा तो लंबा समय उनके साथ में रहने को मिलेगा। तो कुछ देर बाद राधा रानी को समझ में आता था कि मुझे उल्लू बना रहे हैं, ये सब कुछ जानता है फिर भी जानबूझ के गलत स्टेप डाल रहे हैं। इस तरह से चटपटी लीलाएँ यमुना किनारे हुई है। उसके बाद में रामायण में जब सीता देवी और राम वनवास में थे तो वो वृंदावन में आए हैं, मतलब सीता देवी ने यमुना जी का पूजन किया है और यमुना जी को उसमें वादा किया जब मैं वनवास समाप्त करके फिर रानी बनूंगी तो तुम्हारा बहुत गौरव से और वैभव के साथ पूजन करूंगी, ऐसा देवी भागवत ने वर्णन दिया है। उसके बाद जल विहार, नौका विहार, स्नान स्नान विहार, ऐसे कितने प्रकार की लीलाएं हुई। भगवान ने इस जमुना को अपने आवाहन से कुसुम सरोवर में बुलाया है, इसलिए कुसुम सरोवर भी जमुना जी का ही जल है। जमुना जी अपने आप इंडिपेंडेंटली भी है, लेकिन अपने बुलाने से यमुना जी को पैर से गड्ढा बनाकर एक कुंड बनाया भगवान ने, और यमुना जी के जल से उसको भर दिया, और गोपियों ने बिने हुए फूल को वहाँ पर जल में धोया, और फिर भगवान ने उसी किनारे बैठकर राधा रानी के बालों का फूलों से श्रृंगार किया। ये कुसुम सरोवर की लीला जो है वो यमुना जी के पास ही तो हुई है। और लास्ट में भगवान की पत्नियां जो है, जब भगवान भी अंतर्धान हो गए तो उनकी 16,108 पत्नियों को लेकर परीक्षित महाराज जी वृंदावन आए थे भगवान के आदेश के अनुसार, तो उनकी मुलाकात जमुना जी से वहाँ पर हुई है। जमुना जी का जल उछल रहा था बहुत ज़ोर से, तो रानियाँ कहते तुम भी हमारे सौतन हो, हमारी को वाइफ हो, कृष्ण की पत्नी हो, हम कृष्ण के जाने से रो रहे हैं और तुम कैसे उछल रही हो। तो कहते हम राधा रानी के अंश हैं, हम ब्रजवासी हैं, और राधा रानी के अंश होने से हमको विरह का दुख छूता नहीं है, हम हमेशा वृंदावन में आनंद में रहती है। इसका और समझना है तो कुसुम सरोवर जाओ और उद्धव से भागवत सुनो, उद्धव जी आपको इस रहस्य को समझाएंगे। तो यमुना देवी ने ही कृष्ण भगवान के 16,107, क्योंकि एक रानी तो वो भी है ना खुद की, कृष्ण भगवान के 16,107 रानियों का उद्धार का मार्ग बनी है, मार्गदर्शक बनी है यमुना देवी। उनके मार्गदर्शन से ही वो कुसुम सरोवर गई है, वहाँ पर उद्धव जी का दर्शन हुआ है, उद्धव जी ने उनको 30 दिन तक भागवत सुनाया है, वो भी यमुना जी का ही जल है, उसी के किनारे बैठकर उद्धव जी ने उनको 30 दिन भागवत सुनाया है। उसके बाद वो सारी पत्नियों का धाम गमन हो गया है, वो तो अपने धाम में अपने स्वदेह में वहाँ पर चली गई है। क्या कहें आपको, यमुना जी अनंत लीलामयी है, अनंत कृपामयी है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, लीला तो अनंत है भगवान की, उनके बिना भगवान लीला नहीं करते हैं, लेकिन यमुना जी बहुत करुणामयी है। कितने भी हम गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, फिर भी यमुना जी वो गोद में ले लेती है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, डोंट टेक डिसएडवांटेज, कृतज्ञ होकर उनकी कृपा का लाभ लेकर भगवान की भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं वो यमुना जी उन पर अनंत कृपा करती है। बाकी लोग तो क्या है ना, पाप को नष्ट करने के लिए धुलने के लिए जाते हैं, भक्त लोग पाप पुण्य को धुलने के लिए यमुना जी में प्रवेश नहीं करते हैं। भक्त लोग यमुना जी में प्रवेश करते हैं या स्मरण करते हैं या छूते हैं केवल प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए। और यमुना देवी में किसी मृत व्यक्ति की अस्थियां पहुंचती है तो व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेता है, इसलिए अस्थि विसर्जन हम मयत व्यक्ति का यमुना जी में किसी घाट में करते हैं। वो कहते हैं वो लास्ट स्टॉप है, वहां पर किसी की डेड बॉडी आ गई या किसी का ऐश अस्थि पहुंच गई तो व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेगा, इतनी यमुना जी में शक्ति है, उसी के लिए पह रही है वो पृथ्वी पर हमारा कल्याण करने के लिए, इसलिए उसका लाभ लीजिए। यहाँ पर भी यमुना जी है, संध्या आरती में उनको हम पूजन करते हैं, समय मिलेगा तो वृंदावन जाइए, वहाँ पर यमुना जी का दर्शन कीजिए, वहाँ पर यमुना जी का पूजन कीजिए, दीपक दान कीजिए, उसके अंदर प्रार्थना कीजिए। यमुना जी आपको जीवन के परमोच्च लक्ष्य की प्राप्ति करा सकती है, शक्ति है उसके अंदर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, राजा के पास जाते हैं तो राजा भूख लग रही है दो रोटी दे दो, तो राजा मन में हंसता है, वो कहता है अरे तेरे पूरे जिंदगी की रोटी की व्यवस्था कर सकता हूँ, तो दो रोटी क्यों मांग रहे हैं मुझसे। ऐसे हम यमुना जी का बोलते, यमुना जी पाप हरो दुख हरो, अरे दुख हरने का क्या कारण है, उनसे भक्ति मांगो, ऐसा काम ऐसा चीज मांगो तो उसे पाप पुण्य सबसे मुक्ति करा देगा और जीवन से भी मुक्ति करा देगा। तो राजा के पास जाके ऐसे चिंटू चीज नहीं मांगनी चाहिए, राजा की हैसियत क्या है वो देखकर राजा से मांगना चाहिए। उसी प्रकार से यमुना जी में जाकर वो चिंटू चिंटू चीज मांगनी नहीं चाहिए, जो बच्चे मांगते हैं ना खिलौने जैसा, वैसा खिलौना नहीं मांगना चाहिए। आपको प्रेम भक्ति मांगनी चाहिए, जिससे ये जो जंजाल है जन्म मृत्यु का वही एक ही बार छूट जाए। बार बार आकर आप पाप पुण्य का हिसाब करने की जरूरत क्या है, एक ही बार ऐसा दान मांगो कि दोबारा आऊंगी नहीं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, एक ही बार भगवान के धाम में प्रवेश करो, दोबारा लौट के ही मत आओ यहाँ पर, क्यों धक्का खाना यहाँ पर आके, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, व्हाट इज द नीड, बार बार आकर जन्म मृत्यु का दर्शन करने की जरूरत ही क्या है। यमुना जी आपको उस पूर्ण दुख से ही मुक्त कर सकती है, जन्म मृत्यु के दुख से ही रिहा कर सकती है, तो वो वरदान मांगो। मांगने वाले को बुद्धि होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, क्या मांगना है, किससे क्या मांगना है पता होना चाहिए, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य का जीवन दिया है, हाँ खिलौना मांगने के लिए नहीं दिया है। ऐसा दान मांगो दोबारा आने की जरूरत ही नहीं पड़े, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।